पृष्ठ संख्या 34। वासवदत्ता। वासवदत्ता प्रस्तुत नाटक की नायिका है। नाटक के आदि से लेकर अंत तक वासवदत्ता के चरित्र में हमें केवल आदर्श ही आदर्श के दर्शन होते हैं। यदि उदयन के चरित्र से वासवदत्ता के चरित्र की तुलना की जाए तो निश्चय ही वासवदत्ता केवल 20 ही नहीं बल्कि 25 पड़ेगी। उदयन के प्रति वासवदत्ता के हृदय में अगाध प्रेम है, पर वासवदत्ता प्रेम से अधिक कर्तव्य को महत्व देती है। उदयन के प्रेम में आसक्ति है, पर वासवदत्ता का प्रेम त्याग, बलिदान एवं कर्तव्य बोध पर आश्रित है। वह उदयन के प्रेम में पूर्ण समर्पित है, पर उसके हित के लिए वह यौगंधरायण की योजना को स्वीकार कर उससे कुछ दिनों के लिए अलग हो जाती है। पद्मावती के यहाँ रहती हुई वह हमेशा अपने शील का परिचय देती है। पद्मावती से उदयन का विवाह हो जाने पर भी वह विषण नहीं होती, या कि पद्मावती के प्रति उसके हृदय में कभी भी सौतिया डाह पैदा नहीं होता, अपितु पद्मावती को वह बहन की तरह मानती है। विरह अवस्था में वह आंसुओं की घूंट पी पी कर भी अपने कर्तव्य मार्ग से कभी च्युत नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वासवदत्ता के चरित्र में उदारता, महत्ता, शील, संयम, धैर्य और प्रेम का जो सम्मिश्रण है, इससे उसका चरित्र नितांत आदर्शपूर्ण बन गया है। कविवर भास की लेखनी ने वासवदत्ता का जैसा चरित्र प्रस्तुत नाटक में चित्रित किया है, वह एक भारतीय नारी के सच्चे आदर्श की प्रस्तुति में पूर्ण समर्थ हैं, और वासवदत्ता के रूप में आदर्श भारतीय नारी का जो स्वरूप महाकवि ने प्रस्तुत किया है, उसके लिए हम महाकवि भास के आभारी हुए बिना नहीं रह सकते। पद्मावती। पद्मावती मगधराज दर्शक की बहन है। वह अत्यंत रूपवती है। प्रथम अंक में वासवदत्ता उसके रूप की प्रशंसा करती हुई कहती है, अभिजनानुरूपम खलवस्या रूपम। विदूषक एवं उदयन भी उसके रूप की प्रशंसा करते हैं। पृष्ठ संख्या 35। वह मधुर भाषिणी भी है। वासवदत्ता उसकी वाणी की प्रशंसा में कहती है कि नहि रूपमेव वागपि खलवस्या मधुरा। रूपवती और मधुर भाषिणी होने के साथ साथ वह धर्मप्रिया और उदार भी है। प्रथम अंक में ही उसके इन दोनों गुणों का हमें पता चल जाता है, जब वह तपस्वियों को मनचाही वस्तु मांगने के लिए आमंत्रित करती है। ब्रह्मचारी जब उदयन की शोकावस्था का वर्णन करते हुए उसकी मूर्छा की बात कहता है तो वह घबरा जाती है, जिससे उसके हृदय की संवेदनशीलता अभिव्यक्त होती है। पद्मावती वचन की पक्की और कर्तव्य के प्रति सदैव जागरूक रहने वाली है। वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखने का प्रस्ताव यौगंधरायण द्वारा रखे जाने पर कंचुकी जब आनाकानी करने लगता है तो वह अपने द्वारा करवाई गई घोषणा का ध्यान रखती हुई झट उसे स्वीकार कर लेती है। धरोहर की रक्षा भी वह अत्यंत कुशलता के साथ करती है। वासवदत्ता के साथ उसका बर्ताव सहेलियों जैसा ही होता है। राजकुमारी होने का जरा भी दंभ उसमें नहीं पाया जाता। विरह व्याकुल उदयन के प्रति उसके हृदय में प्रेम के साथ साथ सहानुभूति भी कूट कूट कर भरी हुई है। नाटक के अंत में वासवदत्ता के प्रकट होने पर वह उसके चरणों में सर झुकाकर अपनी विनयशीलता का परिचय देती है। इस प्रकार सौंदर्य, शील, निराभिमानता, उदारता, सहानुभूति, विनम्रता आदि विविध गुणों से समन्वित पद्मावती का चरित्र निश्चय ही बहुत उत्कृष्ट है। यौगंधरायण। यौगंधरायण उदयन का प्रधान सचिव है। वह राजनीति निपुण, विवेकशील और व्यवहार कुशल है। वह हृदय से उदयन का उत्कर्ष देखना चाहता है। वह केवल राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाला सेवक नहीं है, राजा के हित के लिए वह दुस्साहसपूर्ण कार्य भी कर बैठता है। प्रस्तुत नाटक में उसका अवतरण प्रथम अंक तथा अंतिम अंक में ही होता है, और वह भी बहुत थोड़े से समय के लिए ही, पर पूरे नाटक में उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। पृष्ठ संख्या 36। प्रस्तुत नाटक के घटनाक्रम को यदि गाड़ी का चक्का मान लिया जाए तो यौगन नारायण को उसकी धुरी के स्थान में ही प्रतिष्ठित करना होगा। वासव दत्ता को प्रेमासक्त उदयन से अलग रखना, पद्मावती के साथ उदयन के विवाह की योजना बनाना, मगधराज की सहायता से आरुणि द्वारा अपहृत अपने राज्य को वापस लेना आदि कई बातें हैं जो यौगंधरायण के मस्तिष्क की ही उपज हैं। मुद्रा राक्षस के अंतर्गत चंद्रगुप्त के संदर्भ में चाणक्य की जो भूमिका रही है वह भूमिका प्रस्तुत नाटक में यौगंधरायण की भी है। वह राज्य का एक विश्वस्त, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, राज्यभक्त एवं स्वामी भक्त नागरिक तथा सेवक है। घटनाक्रम की दृष्टि से यौगंधरायण की भूमिका प्रस्तुत नाटक में नितांत महत्वपूर्ण एवं श्लाघनीय है। साथ ही आज के युग में राजनीतिक जीवन जीने वालों के लिए बहुत अधिक प्रेरणाप्रद भी है। भास का नाट्य कौशल। महाकवि भास संस्कृत नाट्य साहित्य के प्रवीण पुरोहित हैं। भास के नाटकों में जो विशेषताएं उपलब्ध होती हैं उनका अनुशीलन इस तथ्य को प्रतिपादित करता है कि एक सफल नाटककार के लिए अपेक्षित सारे गुण समवेत रूप में उनमें विद्यमान हैं। कथा वस्तु का सम्यक समायोजन, पात्रों का सजीव चित्रण, रसानुकूल अलंकारों का निबंधन, अभिनय का सौकर्य, कथोपकथन की अत्यंत सरल शैली, भावों की स्फुट अभिव्यक्ति आदि विविध मानदंडों के आधार पर भास संस्कृत नाटककारों की पंक्ति में अन्यतम स्थान पर सुप्रतिष्ठित हैं। भास के नाटकों में पात्र जीवन की गहनतम व्यवहारिक अनुभूतियों एवं हृदय की संवेदनाओं को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ हैं। स्वप्न वासव दत्ता का उदयन यदि प्रेम के प्रति अत्यंतिक समर्पण का प्रतीक है तो वासव दत्ता उसी प्रेम के लिए उत्कृष्ट त्याग की साक्षात प्रतिमूर्ति है। पद्मावती यदि आदर्श की प्रतिमा है तो मंत्री यौगंधरायण कर्तव्य निष्ठता की देदीप्यमान अमूर्ति है। विदूषक तो पाठकों दर्शकों को हास्य की वह मीठी बुकनी परोसता रहता है जिस पर गंभीर से गंभीर लोगों की भी सारी गंभीरता हजार जान से न्यौछावर हो जाती है। पृष्ठ संख्या 37। तो यह है भास की उत्कृष्ट चारित्रिक चित्रण निपुणता का भव्य निदर्शन। भास अत्यंत भावुक कवि हैं। किसी कवि की भावुकता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह कभी अपनी कृतियों में मार्मिक स्थलों को कहाँ तक पहचान सका है। भास इस क्षेत्र में पूर्ण सिद्ध हस्त हैं। विरह व्याकुल उदयन की मनोव्यथा के वर्णन में कवि ने अपनी मर्मज्ञता का जो परिचय दिया है वह नितांत हृदयावर्जक है। नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाकाः नौवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्री यां तथा वेत्ति भर्ता भर्तस्नेहात् सा च दग्धाप्यदग्धा। स्वप्नवासो दत्तम 13/1। उपर्युक्त पद्य के नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाकाः इस पंक्ति में उदयन की जिस दशा का वर्णन किया गया है वह निश्चय ही किसी भी सहृदय के हृदय में करुणा का संचार करने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार षष्ठ अंक के प्रारंभ में घोषवती वीणा को उपालंब देते हुए उदयन द्वारा कहे गए निम्न पद्य भी मार्मिक भावों की अभिव्यंजना में नितांत सफल रहे हैं। श्रुति सुख निनदे कथम नु दिव्याः स्तनयुगले जघनस्थले च सुप्ता विहगगण रजो विकीर्णदंडा प्रयभयमध्यूषितास्यरण्यवासं श्रोणिसमुद्वहनपार्श्वनिपीडितानि खेदस्तनान्तरसुखान्युपगूहितानि उद्दिश्य मां च विरहे परिदेवितानि वाद्यन्तरेषु कथितानि च सस्मितानि तथा चीर प्रसुप्तः कामों में वीड़या प्रतिबोधितः ताम तु देवीम न पश्याम यस्या घोषवती प्रिया। तृतीय पद्य के ताम तु देवीम न पश्यामि से जो विकलता टपक रही है उसे यदि मार्मिकता की पराकाष्ठा कहें तो प्रायः अतियुक्ति नहीं होगी। पृष्ठ संख्या 38। प्रस्तुत नाटक में कवि ने यदि एक ओर उदयन की मनोव्यथा का मार्मिक वर्णन किया है तो दूसरी ओर वासवदत्ता तथा पद्मावती के आदर्शपूर्ण स्वरूपों का भी प्रभावोत्पादक प्रतिपादन किया है। वासवदत्ता एवं पद्मावती की चारित्रिक विशेषताएं इसी निष्कर्ष को जन्म देती हैं कि कवि के विशाल हृदय में नारी जाति के लिए अत्यधिक समादर भाव है और आदर्श भारतीय नारी की गरिमा को परखने की जो दृष्टि होती है उस दृष्टि से भास पूर्णतः संपन्न है। यौगंधरायण के माध्यम से कवि ने अपनी राजनीतिज्ञता एवं व्यवहार कुशलता का परिचय दिया तथा विदूषक के माध्यम से संस्कृत साहित्य जगत में प्रचलित भासो हासह के कथन को सार्थकता भी प्रदान की। छंदों एवं अलंकारों की समुचित प्रयोग में तो महाकवि भास निपुण है ही, नाटक में प्रयुक्त छोटे छोटे संवाद वाक्य भी नाटक के अभिनेयता का श्री वृद्धि करने के लिए पर्याप्त है। भाषा सरल एवं प्रवाहमयी है। भाषा के अंतर्गत स्थान स्थान पर कतिपय अपाणिनीय प्रयोग यद्यपि खटकते हैं पर इसमें महाकवि का कोई दोष नहीं है। पाणिनि से पूर्ववर्ती कवि की भाषा में यदि कुछ अपाणिनीय प्रयोग मिल भी जाएं तो वह कुछ असंभावित अनौचित्य नहीं है, अपिच भावों का प्रणेता यदि भाषागत स्खलन के चक्रव्यूह में यदा कदा घिर भी जाए तो इसे ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। निष्कर्ष के रूप में महाकवि भास की चमत्कारिक प्रतिभा शक्ति, असाधारण वैदुष्य एवं विलक्षण नाट्य कौशल विद्वानों तथा सहृदय सामाजिकों के लिए निश्चय ही श्रद्धा एवं समादर के विषय हैं।